جلوہِ سیانِ اوجون ہے ستت کیول جان پانے اوجون ہے ستت کیول جان پانے. بولی بھگوان مہاویر سوامی کی دستکشن پرو کی آچار گرو اور ودیا ساگر منی مہاراج کی. ہم سب لوگوں نے اپنے جیون کو اچھا بنانے کے لیے جیسا کہ آچاری بھگوانتوں نے ہمیں اپنی گنوتا کرمشہ بڑھانے کے لیے دھرموں کا اپدیش دیا ہے, ہم نے پریتن کر کے ویسا ہی کیا ہے اور اپنے جیون میں ہم نے سہنشیلتا, کوملتا, ونے, سرلتا اور پوترتا لا کر کے جیون کی سچائی کو جاننے کا پریتن کیا. اور جیسے ہی ہمیں جیون کی واستوکتا کا احساس ہوا, ہمارے جیون کو ہم نے جو پہلے لاپرواہی میں امریادت ہو کر کے جیتے تھے سنبھال لیا, اسے انوشاسن اور مریادت کر لیا. اپنے جیون کو انوشاسن اور مریادت کر کے جو جیتا ہے اسے انایاس ہی بہت ساری شکتی سنچت کرنے کا اوسر مل جاتا ہے. جو شکتی ویرتھ کے کاموں میں نشٹ ہو رہی تھی, جس شکتی کا اپویہ ہم کر رہے تھے, وہی شکتی جیون کے انوشاسن ہونے سے, سیمت ہونے سے وہ سنچت ہونا شروع ہو جاتی. اس سنچت شکتی سے ہم اپنے جیون کو اس طرح تراشیں کہ ہمارے جیون میں پرماتما کی ابھیوکتی ہو سکے, ہم اپنی آتم شکتی کا ادگھاٹن کر سکیں, اپنے آتم سوروپ کو محسوس کر سکیں. اسی کو آج آچاری بھگوانتوں نے تپسیا کہا ہے. ہمارے بھیتر انت شکتی ہے, لیکن ہم اپنے من وانی اور شریر کے دوارا اس اپنی شکتی کا اپویہ کرتے رہتے ہیں. ایک تو ہمیں اپنی انت شکتی کا احساس ہی نہیں ہوتا, اور اگر احساس بھی ہوتا ہے, کرایا جاتا ہے, تو ہم اس کی درلبھتا نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اسے ورت ہی گماتے رہتے ہیں. ایک بھکاری تھا, جیون بھر دو دو پیسے کی بھیک لوگوں سے مانگتا رہا. کبھی بھی جیون میں اس نے سکھ کا احساس نہیں کیا, نہ جو مانگ کر کے کھایا اس میں ہی اس نے سنتوش رکھ کے آنند پایا, مانگتا ہی رہا اور یہ بھول گیا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے, کچھ ہو سکتا ہے میں اس کی طرف بھی دھیان دوں. لیکن اگر درشٹی میں باہر ہی کچھ ہے, باہر ہی سکھ ہے, ایسا اگر بھاؤ اور ایسا احساس اپنے بھیتر ہوتا ہے, تو اپن 24 گھنٹے باہر سے ہی سکھ کی کھوج میں لگے رہتے ہیں اور اپنے من وانی اور شریر کو اسی میں لگا کر کے ویرتھ نشٹ کرتے رہتے ہیں. سو وہ بھی زندگی بھر لوگوں نے دیکھا کہ ابھاؤ گرست بنا رہا, مانگتا ہی رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا جیون سماپت ہو گیا. لوگوں نے دیکھا کہ بھائی यह भिखारी तो परलोक चला गया, जिस स्थान पर बैठ करके भीख मांगता था वो स्थान भी इतना वक्त ही नहीं मिला कि उसे साफ सुथरा बना करके बैठे, सो वह स्थान भी उस भिखारी के वजह से अपवित्र हो गया, गंदगी चारों तरफ फैल गई। सो लोगों ने सोचा कि अब भिखारी तो है नहीं, यह गंदगी यहां से हटा देनी चाहिए। सो गंदगी हटाई, जो ऊपर ऊपर की मिट्टी मलिन हो गई थी उसे भी अलग किया। सो अलग करते ही, उस मिट्टी को हटाते ही, जो विकृत थी सोने का घड़ा उसी के नीचे दबा हुआ लोगों को मिल गया। लोग हंसने लगे कि देखो जिंदगी भर अपने नीचे ही खजाना दबा है, सो प्राप्त नहीं कर सका, लोगों से दो दो पैसे की भीख मांगता रहा, अपनी शक्ति का एहसास ना करके हम भी जो विषय सुखों से सुख की आकांक्षा रखते और भीख मांगती रहती है, केते सुख मिल जावे, ये चीज में सुख मिल जावे, जा चीज मिल जाए तो सुख हो जाए, ये भैया सुख बाहर नहीं है, सुख तो मेरे भीतर ही है, ऐसा एहसास हो जावे सो उस सुख को कैसे प्राप्त किया जावे। अपन जब इस प्रकार का उद्यम करते हैं वही तो तपस्या है। सो तपस्या करते हैं लोग तो सोचते कि धूप में बैठो तो तपस्या कहलाएगी, संकलेश पूर्वक जो तपस्या की जाती है वह सब तामसिक तप कहलाता है, जिसके करने में मजबूरी हो कि करना ही पड़ेगा और जिसके करने से अत्यंत संक्लेशित परिणाम हो रहे हो, बिना किसी आगमोक्त विधि विधान के ही जिसे किया जाए वह सब तामसिक तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या से अपना निस्तार इस संसार से होने वाला नहीं। एक तपस्या और है जो अहंकार वश की जाती है, उसे राजसिक तपस्या करते थे, ऐसा प्रदर्शित करते हैं तपस्या करके कि जैसे सबसे पहले हमने करी हुई है, गीत गाते हैं कि हमने इतने उपास करे थे, इतनी मालाएं फेरी थी। ये भैया पहले रुपया गिनाती है, माला गिनन लगी, का अंतर भाव है जा बताओ। गिन गिन के थोड़ी की जाती तपस्या, अहंकार के लिए थोड़ी, दूसरे को बताने थोड़ी की जाती है, मेरे द्वारा दस तप किए जाएंगे, उपवास किए जाएंगे तो मेरा बड़ा सम्मान होगा, ऐसी भावना से उपवास कर लिए। मान सम्मान की आकांक्षा से अपन ने बहुत बार तपस्या धारण करी है, लेकिन वैसी तपस्या से अपनी आत्मा की जो अनंत शक्ति है वह उद्घाटित नहीं होती, वो तो आत्मा को और मलिन बनाने वाली ही तपस्या है। वास्तविक तपस्या तो जिस तपस्या में भेद विज्ञान है, जो आगम के और गुरुओं के कहे अनुसार की जाती है और अत्यंत प्रसन्नता से बहुत अहोभाव से की जाती है, वह तपस्या ही सात्विक तपस्या है। उसी तपस्या को करके अपन अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सो सात्विक तपस्या भी मन से भी की जा सकती है, वाणी से भी की जा सकती है और शरीर से भी की जा सकती है। जैसे वृक्ष में फल लगता है और पक करके कैसा हो जाता, उज्जवल हो जाता और रसवान हो जाता है, ऐसे ही जो मन वाणी और शरीर के द्वारा सात्विक तप करता है उसके भीतर परिपक्वता आती है, सरसता आती है और उज्ज्वलता आती चली जाती है। मिट्टी जो कि रास्ते के किनारे या कि नदी के किनारे पड़ी है, अगर कलाकार और कुंभकार के हाथ में आ जावे तो उसे घड़े की आकृति देकर के कुंभकार सफल बना देता है। घड़ा भी अग्नि में तप करके और अपने भीतर जल को धारण करने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है। लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं, जिस मिट्टी को छूना भी नहीं चाहते थे, जिसको पैरों तले कुचलने के लिए आतुर थे, उसी मिट्टी से निर्मित घड़े को सिर माथे पर रखते हैं, क्योंकि शीतल जल उसी मिट्टी के घड़े से प्राप्त होगा। घड़े की उपयोगिता कैसे प्राप्त हुई उसको? उसकी तपस्या से। ऐसे ही अपने जीवन में भी अपन अपने जीवन को, अपने मन वाणी और शरीर को तपस्या में लगा करके उपयोगी बना सकते हैं। शीर से तपस्या में आचार्य भगवंतों ने लिखा कि भगवान की ठाट बाट से पूजा अर्चना करना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना, गुरुजनों का विनय करना, हमेशा विनम्र प्रवृत्ति रखना, शरीर से हमेशा झुकने का भाव बना रहना, यह शरीर के द्वारा की जाने वाली तपस्या है। इतना ही नहीं, अपने शरीर को निरंतर धर्म के कार्यों में लगाए रखने के लिए तत्पर हैं। दुकान पर बैठे पांच पैसे का सामान कोई मंगाता है तो ऊंचे रखा है तो दस बार उठते बैठते हैं, सो शरीर उसमें भी लगा है और खड़े होकर के ठाट बाट से भगवान जिनेंद्र की पूजा कर रहे हैं, सो शरीर की शक्ति नहीं है। सामायिक करने को, पूजा करने को, धर्म के स्वाध्याय करने को, चर्चा करने को अपन कहते कि हमारा शरीर तो कमजोर है, हमसे होत नहीं है। ये भैया संसार के काम तो सब होत है, मेरे शरीर से मैं धर्म का कार्य नहीं करता हूं, दूसरे का उपकार नहीं करता हूं, दूसरे की मदद नहीं करता हूं, उसी शरीर के माध्यम से दूसरे का अपकार करता हूं, उसकी हिंसा करता हूं, उसको पीड़ा पहुंचाता हूं। ये थोड़ा सा परिवर्तन अगर अपन कर ले, उस शरीर के द्वारा भी अपन तपस्या कर सकते हैं। नहीं होता भैया किसी से एक आसन उपवास तो का वो शरीर से तपस्या नहीं करते, कर सकता है। ठाट बाट से उस शरीर से अपन पूजा पाठ इत्यादि में लगे हुए हैं, क्या करें, हमारा शरीर उपवास इत्यादि करने में सक्षम नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा करने में तो मैं बहुत सक्षम हूं। घंटों पूजा कर सकता हूं, जाप दे सकता हूं, स्वाध्याय कर सकता हूं, तब तो चर्चा हो रही हो तो वहां पर आराम से बैठ करके मैं उसे सुन सकता हूं जल्दी से। सकता हूं, यह मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं शरीर से किस प्रकार काम लेना चाहता हूं, उससे तपस्या करना चाहता हूं या कि उसी शरीर के माध्यम से अपना संसार बढ़ाना चाहता हूं। वही शरीर कर्म बंध का कारण बन सकता है, वही मनुष्य का शरीर कर्मों की निर्णय का कारण बन सकता है। सो अपने को जिसमें कर्मों की निर्णय हो ऐसा शरीर से कार्य करें तो वो सब कार्य तपस्या कहलाएगी। और वाणी का तप क्या है? अपन ने कल समझा था कि जो भी वचन अपन बोलेंगे हितकारी वचन बोलेंगे, पाप युक्त वचन नहीं बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, प्रिय वचन ही बोलेंगे। सत्यम वद प्रियम वद, हम सच बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलेंगे और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलेंगे। ऐसा हम वाणी के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। या तो हम वचन बोलेंगे नहीं। हमने आपसे कहा था कि छुल्लक जी थे एक बहुत पहले सन 68 में, तो उन्होंने मुझे लिख करके दिया था, अभी तक याद है क्या लिखा था उनने। घृणा से बोलने के लिए ना, प्रेम से बोलने के लिए हां। इतना ही सूत्र अपने जीवन का बना लें जब वचन व्यवहार करें कि मेरे मन में अगर घृणा भाव है तो मुझे वचन बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो तभी वचनों का उपयोग करना है जब मेरा मन अत्यंत पवित्र हो और प्रेम से भरा हुआ हो, तो ही वचन व्यवहार करूंगा, तो मेरे वचनों की सार्थकता होगी। मैं वाणी के द्वारा तपस्या कर रहा हूं, कर्मों की निद्रा उसी वाणी के तप के द्वारा होगी। और मन का तप क्या है? मन में उज्जवल विचार रखना, मन में हमेशा निर्मलता बनी रहना और प्रसन्नता का भाव निरंतर अपने मन में बनाए रखना। भैया दूसरे ने गाली भी दे दी तो जरूरी नहीं है कि हम अपने मन को कलुषित करें। दूसरे ने अपशब्द भी कह दिए, हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हम अपने मन को कलुषित करें, हम अपने भावों को मलिन करें। हम अपने भावों को संभाल सकते हैं, अपनी प्रसन्नता को बनाए रख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। यही तपस्या है मन के द्वारा, तो ऐसी ही तपस्या होगी कि बाहरी वातावरण मेरे मन को कलुषित करने के लिए है, लेकिन मैं अपने मन को कलुषित नहीं होने दूंगा, ये मेरी तपस्या है। आचार्य भगवंतों ने मन वाणी और शरीर से बड़ी आसानी से तपस्या की जा सकती है ऐसा उपदेश दिया है। इच्छा निरोधः तपः, वास्तव में अपनी इच्छाओं को रोक लेने का नाम ही तपस्या है। अपन को कठिन लगता है लेकिन है बहुत आसान। भैया रोज 4 चम्मच शक्कर मिला करके दूध पीते थे एक गिलास। मैं दूध छोड़ा, मैं शक्कर छोड़ी, फिर भी मैंने कुछ थोड़ा सा जीवन को अनुशासित किया। अब तो 4 की जगह 2 चम्मच डाल के ही पीऊंगा शक्कर दूध में, सो ये मेरा संयम हो गया। और किसी दिन मन में विचार आ गया कि बिल्कुल भी शक्कर नहीं डालूंगा, बिना शक्कर के ही दूध पी करके देखूंगा, ये मेरा रस परित्याग नाम का तप हो गया। कोई कठिन है क्या? नहीं भाई, बहुत आसान है। मैं दिन भर में 10 जोड़ी कपड़े बदल करके उन्हें गंदा करता हूं, धोने के लायक आरंभ सारंभ में लगा देता हूं। मैं तो दिन भर में 4 जोड़ी ही कपड़े बदलूंगा, जिससे कि कम से कम धोने पड़े और उसमें होने वाली हिंसा से मैं बच जाऊं। ऐसा अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया, उन्हें जीत लिया, तो यही तो तप है भाई। आपने अभी अभी इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। देखो कमेटी ने निर्णय ले लिया, नहीं तो लोग तो जितने पैसा बचे दवा ले अपन, एक हमने वचन दे सबरी मिटा दे, ऐसा करेंगे लोग? अनाप शनाप खूब खर्चा करेंगे, और या कि बिल्कुल दबा दबा के खर्चा करें, जितो बने बचे सो उतना धरने काम आए फिर। मगर उन्होंने निर्णय ले लिया, अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया कि हमारा कुछ भी नहीं है, न बचे हो चाहे बचे, जो कुछ भी हो हम भगवान के लिए क्षेत्र पर उसे दान दे देंगे। अत्यंत प्रसन्नता से अगर ऐसा अपन ने भाव अपने भीतर बनाया है, तो भैया क्षण भर में अपन ने मन का तप कर लिया। नहीं तो पहले कमेटी को सूचना करो, बोर्ड पे लिखवाओ कि हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं, सब जने बैठो, फिर जा एक मीटिंग हुई है, फिर सिटिंग होगी, फिर ईटिंग होगी, खा पी के लौट गए, निर्णय का वो प्रस्ताव डलगा, और नीचे समर्थन में उन्होंने कही कि हाँ वैसे अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जब बचन लगे, जब देगन लगे, चतुर्मास तो हो जान दो। ऐसा होता
लेकिन अत्यंत साहस का काम है भैया अपनी इच्छाओं को जीतना। तो इच्छाओं को जीतने में ही अपन तपस्या करते हैं और तपस्या का आनंद ले लेते हैं। देखो अगर इच्छाएं नहीं जीती और अपन ने तपस्या धारण कर ली तो क्या परिणाम निकलता है? सबको मालूम है कि शुभचंद्राचार्य और उनके भाई तपस्या करने के लिए मुनि व्रत धारण करके और जंगल में विचरण करने लगे।
लियो और कछु कह रहे भी हाँ ठीक है। जिनवाणी के बाद भैया सब जन रुके रहियो कछु और घोषणा उसना करने उनको भगियो ने जा लिखी उसमें।
तो क्या हुआ कि शिवचंद्राचार्य और उनके भाई तपस्या में लीन है। सो भाई ने तो तपस्या के माध्यम से रस सिद्ध कर लिया। 12 वर्ष में तपस्या से जो रस सिद्ध किया सो मन में विचार आया कि देखें तो भैया ने क्या तपस्या करी। सो अपने शिष्यों को भेज करके भैया का पता लगाया। सो भैया तो बिल्कुल ही गरीब सी स्थिति में है ऐसा उनके शिष्यों ने कहा। कैसे कपड़ा लगता तक नहीं हते, नगर थे मुनि महाराज थे। सो देख करके लौट आए कि खाने पीने तक का तो हिसाब नहीं है, कपड़े लत्ते पहनने का भी हिसाब नहीं है, बड़े गरीब अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे। बड़ी दया आई भाई को अपने बड़े भाई के प्रति। सो आधा मटकी जो रस सिद्ध किया था 12 वर्ष की तपस्या से सो वो आधा शुभचंद्राचार्य को भेज दिया। शिष्यों के द्वारा से शुभचंद्राचार्य ने कहा कि जाओ डाल दो जमीन में। सब शिष्य घबराए कि हमारे गुरु जी ने तो इतनी तपस्या के बाद रस सिद्ध किया और कह रहे कि जमीन में डाल दो। इनको दिमाग गड़बड़ हो गया ऐसा लगने लगता अपने को। जिस व्यक्ति से कुछ नहीं छूटता उसको कोई छोटा हुआ दिखाई पड़ता है तो लगता है कि देखो तो जी बेकार में ऐसा छोड़ रहे, बड़ी मुश्किल से तो अपन ने ले पाओ, हमें दे देते तो अच्छो रहते हैं। ऐसा लगने लगता जैसे कि तंदुर मच्छ और साली मच्छ दोनों अपने भावों के द्वारा अपने अपने कल्याण और अकल्याण में उपाय कर लेते हैं। इसी प्रकार जब लौट करके आए शुभचंद्राचार्य के पास से सबरे शिष्य और कहा कि वे तो आपके भाई भैया तो थोड़े दिमाग उनको स्क्रू स्क्रू धीरे हो गए, उनने तो रस्सी बिकवा दिया। अब भैया को लगा कि चलो अपन चलो आ दो लेकिन जो बच्चों है भैया को समझे हैं। सो पहुंचे सो आधा रस जो बचा था वो भाई को भेंट करने लगे। तो भाई ने कहा कि क्या इसी के लिए तुमने मुनि व्रत अंगीकार किया था? क्या इसी संसार बढ़ाने के लिए किया था? अरे तुम्हें सोना कितना चाहिए, फेंक दो ये रस जमीन में, जितना सोना चाहिए हो एक चुट्टी धूल उठा करके सामने वाले पर्वत पर फेंक दी, सारा पहाड़ सोने का हो गया। भाई देख करके दंग रह गए। शुभचंद्राचार्य ने कहा कि ऐसी संपत्ति तो अपन छोड़ के ही आए थे, फिर उसी संपत्ति के प्रति आसक्ति हो गई, उसी की इच्छा जागृत हो गई, तो ले लो इस पूरे पर्वत को जहां बने सो ट्रेजरी में बंद करके रख लो, क्या करोगे इसका? तब भाई को समझ में आई कि इच्छाओं के साथ मैंने तपस्या करी संसार की, सो वो सब तपस्या वास्तविक नहीं कहलाएगी जिसमें कि संसार की इच्छाएं शेष हैं। इच्छाओं का अगर मैं निरोध करूं तो वास्तविक तपस्या होगी। ऐसे ही पुष्पडाल और वारिशैन 12 वर्ष तक पुष्पडाल अपने भीतर संसार के प्रति आसक्ति रखे रहे। वारिशैन महाराज ने उन्हें संबोधित करके उनकी आसक्ति को दूर किया।
और मोक्ष मार्ग में लगाया, तपस्या में लगाया। भाई तपस्या तो इच्छाओं का जितना जितना जिससे जितना बने, ऐसा नहीं कि अपन सभी इच्छाएं कहीं फेंकने जाना है सो फेंके आए और निश्चिंत हो जाए। हां भैया, रोज रोज अपनी कम से कम जो दूसरे के लिए अहितकारी हैं उन इच्छाओं की पूर्ति का तो प्रयत्न नहीं करेंगे। मेरे लिए जो कल्याणकारी हो दूसरे के लिए भी हितकारी है ऐसी इच्छा पूर्ति करूंगा, अन्यथा मेरी बाकी इच्छाओं का त्याग है, इच्छाओं का मैं निरोध करता हूं। यही तपस्या मेरे जीवन में मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए पर्याप्त है। कर्मों की निद्रा, कर्म शयार्थम तपते इति तपः, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जो तपस्या की जाए कर्म के क्षय के लिए, वास्तव में वो तपस्या ही श्रेष्ठ है, वही प्रशंसनीय है। अपन भी जो कुछ भी धार्मिक कार्य करें उन सब का उद्देश्य क्या हो, अपना मेरे कर्मों की निद्रा हो, इस संसार से मुझे मुक्ति मिले, मैं अपने आत्म स्वरूप को, मैं अपनी वीतरागता को प्राप्त कर सकूं, ऐसा भाव हो, चाहे पूजा करें हो चाहे दान दे में, काहे के लिए, अपनी नाम बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा सम्मान के लिए नहीं, मैं तो सिर्फ कर्मों की निर्जरा जो अज्ञानतावश मैंने पाप कर्म अपने भीतर संचित कर लिए हैं उनको मैं निर्जरित करूं, ऐसी मन में ललक जिसके निर्जरा की है वही तपस्या को धारण करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता। बहुत पहले की बात है, सन 1980 में आचार्य महाराज के संग सहित मुक्तागिरी से हम लोग विहार कर रहे थे, एक स्थान पर भूल से लोगों ने तो कुछ कहा नहीं, न लोगों से पूछते हैं, आचार्य महाराज ने तो अपना पिछी कमर लल उठाया और विहार कर दिया। अब तुम बाजे बजाते रहो, पीछे हल्ला करते रहो, है कि नहीं? नहीं तो फिर बाजे से जाने पड़े, विहार भी बाजे से, बताओ। अब होने में आइए, पहले इस तरह का नहीं था, ने आने में बाजे ने जाने में बाजे, कोई प्रपोगंडा नहीं, कोई आडंबर नहीं, और चल दिया। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक बाइफर्केशन आया, सो क्षण भर रुक करके और आगे चले गए, वहां पर निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्योंकि मालूम नहीं था कि ये रास्ता तो बहुत दूर, 9 किलोमीटर और चलना पड़ेगा तब पहुंचेंगे जिस गांव में पहुंचना है, और अगर जो रास्ता छोड़ दिया था उससे जाते तो 3-4 किलोमीटर पांच ही में पहुंच जाते, वो चक्कर से जाना पड़ा। सो 1 किलोमीटर गांव रह गया, नहीं पहुंच पाए और रात्रि का अंधेरा घिरने लगा, संध्या हो गई। अब आगे गमन कैसे करेंगे, ऐसा आचार्य महाराज ने विहार स्थगित कर दिया और वहीं रास्ते के किनारे रात्रि विश्राम करने का विचार करने लगे। सो खेत में ही एक ऐसा झोपड़ी नुमा कुछ स्थान बना हुआ दिखाई पड़ा हम लोगों को, सो हम लोगों ने कहा कि महाराज वहां रुक जाते रात्रि में। 10-20 कदम चल के देखा तो हां, वास्तव में ज्वार के सिट्टे होते हैं बाले, सो वो तो निकाल ली थी, उसमें अकेली डंठल बची थी, सो उस डंठल से नीचे का प्लेटफॉर्म बनाया था, ऊपर से तो खुला था और तीन तरफ से उसी डंठल से बांध करके घेर दिया था ताकि उसमें गल्ला इत्यादि रख सके, ऐसा किसी किसान ने अपने खेत में व्यवस्था करी थी। सो वो खाली पड़ा था, सो उसी में स्थान देख करके बैठ गए। रात्रि घिर गई, कहीं जाने का सवाल ही नहीं, 1 किलोमीटर दूर गांव है, वहां के लोगों को मालूम पड़ा, सुबह 9:30 बजे रात तक आ पाए। अब सामायिक इत्यादि को जब बैठे, सो डंठल में जो कांटे थे वो धीरे धीरे हिलने पर चुभने लगे, तब समझ में आई कि मामला तो गड़बड़ है,
और इतना ही नहीं, रात घिरने से ठंड बढ़ने लगी सो ठंड भी लगी, और मच्छर महाराजों को बड़ा प्रकोप, वे तो जाता उठा के नहीं ले गए, नहीं तो उठा ही ले जाए। सुखून ने दंश मशक जितना हो सकता था भरपूर उस दिन आनंद लिया। अब हम लोग सब नए नए तो थे, इतने दंश मशक, इतनी ठंड और इतनी चुभन, उसे सहसा शांत भाव से सहन तो करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। आचार्य महाराज तो अत्यंत प्रसन्न भाव से सब सहन कर रहे थे और अपने सामायिक में लीन थे। जब रात में लोग आए तो उनने थोड़ी बहुत व्यवस्था करी, व्यवस्था के लिए उनने सोचा कि भैया वृत्ति कर दो, महाराज जब लेट हैं सुजी जो डंठल और धरे हैं वे सब उनके ऊपर से डार दे सो तुप दे महाराज, तो ठंड में लग है। उनने तो अच्छा विचार किया, सो जैसे ही भैया वृत्ति के बाद विश्राम करने के लिए लेटे सब महाराज, सो ऊपर से उनने वो डंठल डाल दिए कि ठंड बच जाएगी, चटाई वगैरह तो थी नहीं, आई नहीं पाई थी चटाई। सो सारी रात उसी डंठल के बोझ के नीचे पड़े रहे, हिलना भी मुश्किल, सवेरे की सामायिक पड़े ही पड़े करी बैठे नहीं सकत, जब प्रभु प्रेस उठा है सब सामान जब बैठे और धोए नीचे, वो तो सोच रहे कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा परिचय ऐसा उपसर्ग उन क्षणों में आ गया, क्या करें, सहन करो। एक तो रो रो के सहन किया जाता संकलेश पूर्वक, और एक तो समता भाव से सहन किया जाता है, जो समता भाव से सहन किया जाता सो तप है।
शुद्धात्मने निरत नित्य हितो ग्रीष्म ऋतु में जन है सयानी पूजू है सतत केवल ज्ञान पानी पूजू है सतत केवल ज्ञान पानी।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोग अपने आध्यात्मिक विकास के लिए पूजा के प्रयोग पर विचार कर रहे हैं। पूजा और अभिषेक ये दोनों ही एक सदगृहस्थ के जीवन को आध्यात्मिक दिशा में ले जाने का प्रयोग है। अध्यात्म की अपनी विशेषता है, यह अध्यात्म उसे ही हम कहते हैं जिसमें कि हम सुख दुख के बीच समता का अभ्यास करते हैं। वैसे सामान्य रूप से हम सुख दुख के बीच अभ्यस्त हैं हर्ष विषाद करने के, लेकिन एक सामायिक का प्रयोग और एक पूजा अभिषेक का प्रयोग ये हमारे अपने जीवन में समता की साधना के प्रयोग है। पूजा को अतिथि संविभाग भी कहा है, पूजा को पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत भी रखा है, पूजा स्वाध्याय भी है, पूजा ध्यान और सामायिक भी है। पूजा इतने सब गुणों से युक्त है और दो तरह से की जाती है, द्रव पूजा या कि व्यवहार पूजा और भाव पूजा यानी निश्चय पूजा। भगवान के जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उनके गुणों का चिंतन करना ये निश्चय पूजा कहलाती है, और भगवान के समक्ष दीप धूप इत्यादि द्रव अर्पित करना ये द्रव पूजा कहलाती है। द्रव पूजा के अंतर्गत आठ द्रव रखे गए हैं। आठ ही क्यों रखे गए हैं, अगर इस पर थोड़ा विचार करें तो हमारे अपने शरीर में भी आठ ही अंग हैं, और यदि एक भी अंग हमारे शरीर से पृथक कर दिया जाए तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमें दृष्टि की निर्मलता के साथ साथ सम्यक दर्शन के साथ साथ आठ गुण भी हमारे भीतर प्रकट होते हैं। नामहीन मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्ववेदना। किसी मंत्र में से एक अक्षर भी यदि कम हो और वो मंत्र विष को दूर करने वाला मंत्र हो तब वो विष को दूर नहीं कर पाएगा अक्षर की हीनता के कारण। ठीक ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ जो आठ अंग अनिवार्य है उसमें से एक अंग भी ना हो तो वो सम्यक दर्शन जन्म की संतति को नष्ट करने में पूर्ण रूप से सहयोगी नहीं बन पाएगा। ऐसे ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के भी आठ अंग हैं, और यदि आठ अंगों के साथ हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो ही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ये सारी चीजें हम जानते हैं, और इन सब से भी ऊपर हम विचार करें तो इस संसार में हम अपने आठ कर्मों की वजह से ही दुख उठा रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम अपने
स्वभाव को इन कर्मों के वजह से भूल चुके हैं। इन आठ कर्मों को नष्ट करने के लिए हमने भगवान की पूजा पद्धति में आठ द्रव्यों को समायोजित किया है। एक एक द्रव्य, एक एक कर्म को नष्ट करने की भावना से हम भगवान के सामने समर्पित करते हैं। जैसे हम भगवान की पूजा की शुरुआत में जल समर्पित करते हैं, जल ज्ञान का प्रतीक है और इसलिए हम जल चलाते समय यह विचार करते हैं कि मेरी अज्ञानता के कारण ही या कि मेरे सम्यक ज्ञान के अभाव में ही मैं यहां जन्म मरण का दुख पा रहा हूं। मैं जल समर्पित करके ये भावना गाता हूं कि मेरे ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे कि मैं अपने जन्म मरण की इस वेदना से बच सकूं, अपने जन्म मरण से मुक्त हो सकूं। हम लोग बोलते भी हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म, या कि ज्ञानावरण के क्षय के लिए जल अर्पित करते हैं। क्या जिस समय हम जल चढ़ाते हैं हमारे मन में ऐसी भावना आ पाती है? लाना चाहिए, आ तो नहीं पाती है, क्योंकि अभ्यास तो सिर्फ जल चढ़ाने का है। काहे के लिए चढ़ा रहे हैं इसका अभ्यास किया नहीं हमने, उस समय हमारे मन में यह विचार आ नहीं पाता है कि मैं ये जल, अभी तो मेरा मन उस जल में अटक जाता है कि वो जल कैसा है या कि जल किस में चढ़ाना चाहिए, दो दो सामने कटोरियां रखने की क्या आवश्यकता है, एक ही में जल और उसी में चंदन चढ़ा देंगे। पूजा के कर्मों में भी हम धीरे धीरे करके और कमी लाना शुरू करते हैं। ठोना गायब हो गया, कौन करे स्थापना। फिर दो की कैबिन में देखी, हम लोग जितने वैज्ञानिक रहे हैं उतने आर्टिस्ट भी रहे हैं, ये ध्यान रखना। और आज हम दोनों चीजें भूल गए, हम मंदिर का अपना साइंस और मंदिर का अपना आर्ट दोनों ही भूल गए। बीच में ठोना रखा है, दोनों तरफ दो कटोरियां रखी हैं जिनमें जल और चंदन अलग अलग चढ़ाया जाएगा, ये कितना आर्टिस्टिकल, कितना बैलेंसिंग है। वास्तु वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा कि एक भुजा खाली रखी आपने, एक तरफ रखा एक तरफ खाली रखा है, तो भुजा दोष हो गया, सिद्धांत बन गए। इतनी छोटी सी चीज, और हमारे आचार्यों ने पहले से ही रख दिया था कि सेंटर में हम स्थाप रखेंगे और आजू बाजू दो कटोरियां रखेंगे, काम एक ही का है लेकिन दो रखेंगे, वो बैलेंस के लिए, वो कला की दृष्टि से भी जरा ठीक ठीक थाली सजा करके रखी जाए, ठीक ठीक सारे पूजा के उपकरण रखे जाए, ठीक से वस्त्र धारण किए जाए, वो जो मैले कुचैले जिनको कि बस निचोड़ करके, वो भी एक निचोड़ने वाला लगा हुआ है, वो निचोड़ के डाल जाता है और हम पहन करके खड़े हो जाते हैं, कहां बनेंगे भाव में, निर्मलता आएगी कैसे, कितने ही जल चढ़ा देवे हम। लेकिन हमने इन छोटी छोटी चीजों पर भी और विशेष रूप से गौर ही नहीं किया कभी कि कहां मैं अपने ज्ञानावरण कर्म के नष्ट करने के लिए यह अनुष्ठान करने जा रहा हूं, अभी मेरी अज्ञानता कितनी है छोटी छोटी चीजों को लेकर। ये तो हुआ सैद्धांतिक संदेश, अगर हम चाहें तो जल से व्यवहारिक संदेश भी ले सकते हैं। जल जहां एक ओर हमारी प्यास बुझाता है, सबकी प्यास बुझाता है, क्या हमारे अपने जीवन की प्यास या हमारे जीवन से किसी और के जीवन की प्यास हम बुझा पाए हैं? भौतिक प्यास नहीं, आध्यात्मिक और आत्मिक प्यास। भौतिक प्यास के लिए तो हम प्याऊ खोल देते हैं और उसका फीता काट के फोटो खिंचवा के पेपर में पब्लिश कर देते हैं, ये तो हमारी आदत में है। लेकिन कभी हमने ऐसा कोई उपाय किया जिससे कि दूसरे के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, उसका अज्ञान हटे और वाकई में उसकी आध्यात्मिक प्यास बुझ जाए? और जल की एक और विशेषता है कि वो सब में मिक्सअप हो जाता है। हम तो अपने ही लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते। हम तो जिन्हें अपना मानते हैं उनके भी विचारों से हम असहमत होते हैं, उनकी ही क्रियाओं से हम असहमति प्रकट करते हैं। भाई क्या इतने छोटे छोटे से संदेश भी हम पूजा के दौरान, वास्तव में यह जो पूजा के आठ द्रव्य हैं वो 10-15 मिनट में भले ही भगवान के सामने चढ़ा करके हम निवृत्त हो जाते हों, लेकिन एक एक द्रव्य से मिलने वाला संदेश पूरे दिन भर भी हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त है। हमें उससे संदेश लेते रहना चाहिए। जल के बाद हम भगवान के सम्मुख चंदन चढ़ाते हैं। चंदन को शीतलता का प्रतीक माना गया है। न शीतलास चंदन चंद्र रश्मयो न गांग नंभो न चहार यष्टया। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समुद्रभद्र स्वामी कह रहे हैं कि इस लोक में चंद्रमा की चांदनी, गंगा का जल, चंदन, मोतियों की माला और हार, ये सब शीतलता के प्रतीक माने गए हैं। अनुवाक रश्मया शीतला। लेकिन हे शीतलनाथ भगवान, आपके जो निर्दोष मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले वचन है, वास्तव में वो शीतलता देने वाले। मैं भगवान के सामने चंदन चढ़ा करके अपनी उस शीतलता की कामना करता हूं। मुझे भगवान की वाणी सुनकर के आत्मदर्शन की प्राप्ति हो, तब मेरे जीवन में शीतलता आएगी। दर्शनावरणी कर्म नष्ट भी हो साथ में, तब मुझे आत्मदर्शन होगा, तब मुझे वो निर्विकल्प अपने आत्मा के स्वरूप का दर्शन होगा। इतनी बड़ी भावना लेकर के हम चंदन चढ़ाते हैं। वैसे चंदन चढ़ाना नहीं लिखा, चंदन चर्चित करना लिखा हुआ है। इस तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। चंदन चर्चित किया जाता है तो अनामिका उंगली से भगवान के चरणों में उसका स्पर्श किया जाता है चंदन का। और कई जगह ये पद्धति भी है, ये ध्यान रखना, वो गलत नहीं है। ठीक है, हम नहीं करते, हमारी चॉइस, लेकिन जो करते हैं वे गलत नहीं करते हैं। क्योंकि चंदन अर्चित करना नहीं लिखा, चंदन चर्चित करना लिखा हुआ है। चर्चित शब्द है संस्कृत का, यानी भगवान के स्पर्श करना। चंदन वो किस बात का प्रतीक है? इसी का, कि मैं भगवान आपकी वाणी के द्वारा आत्मदर्शन की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे वास्तविक शीतलता मिले। और वैसे अगर व्यवहारिक संदेश लेना चाहे चंदन से, तो चंदन तो दूसरे को घाव भी हो जाए, दूसरे को संताप हो जाए, तो उसे शीतलता देता है। लेकिन हमारे अपने जीवन में झांक के देखें कि दूसरे को कितनी शीतलता मिली है, या कि उसके संताप को हमने बढ़ाया है, उसके घावों पर हमने चंदन की तरह मरहम लगाई है, या कि उसके घावों को और कुदेर करके उसे पीड़ा ही पहुंचाई है। अपने सुबह से शाम तक के जीवन में इधर चंदन चढ़ा करके जब हम बाहर निकले, तो मेरे मन, वाणी और शरीर से किसी को चोट न पहुंच जाए। किसी को कहीं से चोट पहुंच गई है तो मैं उसकी शीतलता का क्या उपाय करूं, ऐसा ख्याल कभी मन में आता है? चंदन चढ़ाने के बाद आना चाहिए, प्रयत्न करेंगे तो आएगा। एक बार किसी काशी नरेश को तीव्र दाह ज्वर की वेदना हुई थी, और उस दाह ज्वर की वेदना से बचने के लिए बहुत उपाय कर लिए। आखिरी में किसी वैद्य ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है कि मलयागिर का शीतल चंदन ला करके उसे घिसा जाए और उसका लेप हर घंटे महाराज के शरीर पर किया जाए। रानियों ने कहा कि ये कार्य हम स्वयं अपने हाथ से करेंगे, और रानियों ने जैसे ही चंदन घिसना शुरू किया तो हाथ में जो चूड़ियां पहन रखी थी उनकी इतनी ध्वनि कर्कश निकलने लगी कि राजा के दाह ज्वर में और अधिक वेदना होने लगी। राजा ने कहा कि क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, महाराज आपके उपचार शीतलता के लिए चंदन घिसा जा रहा है, लेकिन इतना शोर क्यों, इतनी आवाज क्यों हो रही है? हमने कहा देखते हैं महाराज क्या बात है। जाकर के रानी साहबा से कहा कि शोरगुल बहुत हो रहा। उन्होंने कहा जाइए, अभी नहीं होगा। और थोड़ी देर के बाद जो है, जब शोरगुल बंद हो गया तो राजा को यह संदेह हुआ कि क्या चंदन घिसा जाना बंद कर दिया। तो मंत्री जी से पूछा कि चंदन का घिसना बंद हो गया क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज, चंदन तो फिर भी घिसा जा रहा है, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? महाराज, सब रानियों ने अपने हाथ की चूड़ियां उतार कर सिर्फ एक एक चूड़ी अपने हाथ में डाल रखी है, और जहां एक है वहां टकराहट तो है ही नहीं, तब आवाज निकलेगी कैसे? इतनी सी बात, इतना सा बोध वाक्य, निर्दोष भगवान के वचन ही हमारे जीवन को शीतलता दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो चंदन नहीं दे सकता। पर चंदन चढ़ाते हैं इसलिए कि भगवान की वाणी से कोई ना कोई चीज लेकर के निकले और मेरे मन वाणी और शरीर सबको शीतलता प्राप्त हो। और उन्होंने, राजा ने तुरंत ही विचार कर लिया कि ये बात है, मैं जब तक यहां सबके बीच रहूंगा, प्रपंच में रहूंगा, राग द्वेष करता रहूंगा तो कहां शीतलता मिलेगी। अगर मैं इस दाह ज्वर से मुक्त हो गया तो एकाकी मुनि बनकर के समस्त परिग्रह का त्याग करके विचरण करूंगा। और कहते हैं कि दाह ज्वर तो कर्मों की निद्रा और पुण्य के संचय से होता है। सो उस समय जो उनका संकल्प था, उतनी विशुद्धि उनके अंदर आई कि मैं अगर दाह ज्वर से मुक्त हो जाऊं तो महाव्रत धारण करूंगा, एकाकी विचरण करूंगा, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर। उसका परिणाम कि कर्मों की निद्रा हुई, असाता हटी, पुण्य का उदय हुआ और दाह ज्वर शाम होते न होते शांत हो गया। दूसरे दिन सुबह पहली किरण सूरज के साथ उन्होंने महाव्रत धारण कर लिया। हम तो रोज चंदन चढ़ाते हैं, रोज। कितने वर्ष हो गए, जो नहीं चढ़ाते हैं वे इस धोखे में नहीं आएंगे, हम तो चढ़ाते नहीं। ये तो जो चढ़ा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है, जो चढ़ाते नहीं उनसे तो कुछ कहने नहीं। जो चंदन चढ़ाते हैं उनकी भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे चंदन चढ़ा करके अपनी उस वास्तविक शीतलता का उपाय करने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। सुबह से शाम तक क्या मैं ये भावना भाता हूं कि मुझे महाव्रत धारण करना है, मुझे महाव्रत धारण करना है। जैसे बनेगा मैं अपने जीवन के अंत में जरूर एक दिन के लिए ही भले, लेकिन मैं महाव्रतों को अंगीकार करके मुनि बनकर के एक दिन एकाकी विचरण करने का आनंद लूंगा। ऐसी भावना तो भाई ही जा सकती चंदन चढ़ाते समय। फिर चंदन के बाद हम अक्षत अर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, कहे के लिए मुझे अभी जो सुख है वो सुख बाधाजनित है, पराधीन है, और उसके साथ साथ दुख निश्चित भी है। मैं चाहता हूं कि मुझे अव्यवाद सुख मिले, अखंड सुख की प्राप्ति हो। वो अखंड सुख मिलेगा कैसे? अक्षय पद की प्राप्ति होगी कैसे अखंड सुख की, जब तक कि मेरे वेदनी कर्म विद्यमान है? तो फिर मैं अपने वेदनी कर्म के अभाव के लिए और अपने उस अव्यवाद सुख की प्राप्ति के लिए भगवान के सम्मुख अखंड अक्षत चढ़ाता हूं। अक्षत की अपनी विशेषता है कि वे ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। धान से ऊपर का छिलका हटाने पर और भीतर की लालिमा हटाने पर वे उज्जवल अक्षत या अखंड चावल प्राप्त होते हैं। मैं उनसे ये संदेश लेना चाहूं तो ले सकता हूं कि मुझे भी ऐसी ही अखंडता तब प्राप्त होगी जबकि मैं ऊपर के छिलके की तरह अपने चार घातिया कर्म और अंदर की लालिमा की तरह अपने चार अघातिया कर्म यानी आठों कर्मों को जब नष्ट करूंगा तब जाकर के वह अखंडता मुझे प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं, मैं सुबह से शाम तक कितने चेहरे लगा करके जीता हूं, कितना खंडित होकर के जीता हूं, कितना खंड खंड मेरा जीवन है। मंदिर आता हूं तो कुछ और होता हूं, दुकान पर बैठता हूं तो कुछ और होता हूं, घर में तो कुछ और ही मेरा व्यवहार होता है। मेरे अंदर कहीं कोई एक लक्ष्य के प्रति अबाध या निर्बाध कोई मेरे अंदर विचार है या नहीं है? पुराने लोग थे तो जय गिनेन्द्र से दिन शुरू होता था, किसी से मिलते थे तो जय गिनेन्द्र, रात सोने से पहले गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं, न गुड नाइट की आवश्यकता नहीं है, जय गिनेन्द्र। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं सुबह आंख खुलती हूं तो जिनेंद्र जैसे गुणों को प्राप्त करने की भावना से उनकी ही जय जयकार करता हूं, किसी से मिलता हूं तो उसके भीतर जो जिनेंद्र बनने की सामर्थ्य है उसे प्रणाम करता हूं, स्मरण करता हूं कि हम सबके भीतर वही सामर्थ्य है। ये है लक्ष्य की अखंडता। हम चाहें तो अपने जीवन में, इस मौजूदा जीवन में भी उस लक्ष्य की अखंडता को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमें वो अक्षय पद की प्राप्ति होगी, उस अव्यवाद सुख की प्राप्ति होगी। कितनी छोटी सी चीज है, अक्षत चढ़ा दिए हमने, ध्यान ही नहीं रखते हैं कि टूटे हैं कि साबुत हैं। हमारे समय में वैसे तो आज भी करते होंगे, मैं अपने समय की काहे को दुहाई देता हूं बार बार, सब तो उसी से गुजर रहे हैं। हम लोगों को सिखाया जाता था उस समय कि चावल कैसे धोना, द्रव कैसे बनाना, इसके लिए हर एक से द्रव नहीं बनवाई जाती थी। द्रव बनाने के लिए पहले सिखाया जाएगा कि द्रव कैसे बनाई जाएगी। मलमल का बारीक सा कपड़ा रखा जाता था जिसमें कि चावल ऐसे नहीं धोए जाते, चावल ऐसे धोएंगे तो वो तो टूट जाएंगे। चावल को मलमल के कपड़े पर रख करके उसको ढक करके फिर उसके धीरे धीरे करके पानी डाल के उनको रगड़ा जाता है, तब उनकी गंदगी भी साफ होती लेकिन टूटते नहीं है, साफ हो जाते हैं। और उसी में फिर चंदन मिला करके उसी कपड़े से उनको चंदन से रंग करके पुष्प बनाए जाते थे। एक भी पुष्प नहीं टूटेगा, एक भी अक्षत नहीं टूटेगा, इतनी सावधानी। जहां द्रव बनाने में इतनी सावधानी है, वहां द्रव चढ़ाने में भी इतनी सावधानी होगी, और जहां जीवन में इतनी सावधानी हो गई, इतनी अप्रमत्त अवस्था आ गई, तो संसार से मुक्त होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये जो हमारी लापरवाही है, ये जो हमारी अनुशासनहीनता और मर्यादाहीनता है, वही हमारे अपने जीवन के अकल्याण का कारण है। ये कई बार अपन इस पर विचार कर चुके हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसी सावधानी रख पाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। सुबह से कोई व्यक्ति है यहां पर जिसने कि कुएं से जल छान करके जीवानी डाल करके पानी गर्म करके नहा धो करके और फिर भगवान की द्रव सजाई हो और फिर ठाट बाट से पूजा की हो? कोई नहीं है। है कोई? एक आ, चलिए एक तो है, ये तो आप तो आचार्य के भक्त हैं, तो आप तो करेंगे ऐसा, सही है। बहुत समय से देखता हूं आपको आचार्य के पास जाते हुए, महीनों महीनों। वो प्रक्रिया जो है अपने को सीखनी चाहिए। एक दिन तो कम से कम, मैं कहता हूं हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, छह महीने में एक दिन, साल में एक दिन, चलो एक दिन तो मेरे जीवन का ऐसा हो जिसमें कि मैं अपने हाथ से सारी प्रक्रिया करके फिर जरा ठाट बाट से पूजा करके करने का आनंद तो ले सकूं, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि इसका क्या महत्व है। अभी तो मुझे लगी लगाई मिल जाती है, उसमें आराम से संकलेश भी करता हूं, कैसे धोए, ऐसे तोड़ दिए, ऐसे जमाए, पुजारी बदलो, अपने को नहीं बदलेंगे, सब पूरी दुनिया को बदलेंगे, सारा सिस्टम बदल देंगे, लेकिन अपने आप को अपने हाथ से करने का काम दूसरे के जिम्मे सौंपा हमने, जो हमारे हाथ से करने का काम था। अकेले इस थाली में से इस थाली में द्रव चढ़ा देने का नाम पूजा नहीं है, उसके साथ जो भावों की निर्मलता है वो कहां आ पाई हमारे जीवन में। तो भैया जब जब भी अक्षत टूट जाए तो विचार करना कि भले ही अक्षत टूट गए हैं लेकिन मेरा जीवन न टूटे, इतना तो कर ही सकते हैं। अब मैं आगे से इन अक्षत के भी अखंड होने की सावधानी रखूंगा और अपने जीवन में भी अपने टूटने से बचने के लिए कोई प्रयत्न करता रहूंगा। मैं भी अखंड होकर के अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखूंगा, लक्ष्य से विचलित नहीं होऊंगा। अगर मेरे मन में भगवान के जैसे बनने की एक ही लगन है तो दुकान पर मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं घर में किसी से कड़े वचन नहीं बोल पाऊंगा, मेरा जीवन तो अपने आप ही उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर चल करके भगवान जिनेंद्र बने, क्योंकि मेरा लक्ष्य वही मैंने निर्धारित किया है। अक्षत चढ़ा करके और हम ऐसी कामना करना चाहें तो कर सकते हैं। पुष्प चौथे नंबर पर चढ़ाए जाते भगवान के चरणों में, पुष्प प्रतीक है। वो किस कर्म की वजह से होती है? मेरे मोहनी कर्म की वजह से। तब मैं चाहता हूं कि मेरे मोहनी कर्म का क्षय हो और मेरे भीतर ये जो सांसारिक इच्छाएं पंचेंद्रिय के विषयों की लोलुपता है वो धीरे धीरे घटे। भगवान के सम्मुख पुष्प चढ़ाने की सार्थकता यही है। लेकिन यहां तो भगवान के सामने पुष्प चढ़ाकर भी हम उनसे संसार के सुखों की ही आकांक्षा कर बैठते हैं कई कई बार। कभी हमने उनसे ये नहीं चाहा कि हमको वास्तविक जो चीज चाहिए है वो प्राप्त करूं। विचार करें, पुष्प का अपना जीवन भी हमें संदेश देता है। पुष्प का जीवन एकाध दिन का होता है, फूल एकाध दिन ही खुला खिला रहता है। एक लिली का फूल होता है अत्यंत सुंदर, लेकिन उसकी एज कितनी है? सूरज की पहली किरण के साथ फूलता है और शाम ढलने से पहले मुरझाकर टूट करके गिर जाता है। इतना ही जीवन है, लेकिन सबको आकृष्ट करता है, सबको सुगंध देता है, पूरे परिवेश को सुंदरता कोमलता और सुगंध से भर देता है। मेरा अपना जीवन पुष्प चढ़ाते समय मैं भी ऐसी ही भावना नहीं रख सकता हूं कि मेरे जीवन में कोमलता आए, मेरा जीवन सुंदर हो। सुंदर का मतलब ऐसा नहीं समझना कि आप रंग रोगन चढ़ा करके सुंदर हो जाए। रंग रोगन चढ़ा के सुंदर नहीं होता, सुंदर तो होता है परिणामों की निर्मलता से। अगर कोई संसार में सुंदर है तो आचार्य कुमकुम स्वामी के चरणों में बैठ के उनसे पूछें कि क्या है। एकत्व विभक्त आत्मा ही सुंदरो सब लोगे, इस लोक में एकत्व विभक्त मेरा आत्मा स्वरूप ही सबसे अधिक सुंदर है। एकत्व और विभक्त समस्त कर्मों से रहित और मेरे अपने आत्मस्वरूप में स्थित जो अवस्था मेरी है वो है सबसे ज्यादा सुंदर। क्या इसका कभी अभ्यास करते हो इस सुंदरता को पाने का? मैं तो अपने शरीर की सुंदरता के लिए चिंतित हूं सुबह से शाम तक। मैं मुझे पुष्प चढ़ा करके वास्तव में अपने जीवन को कोमल सुंदर और आसपास के परिवेश को भी बहुत सुगंधित बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इतना ही नहीं, भले ही अल्प जीवन हमारा हो लेकिन हमारे जीवन का हम सदुपयोग कर सकें। हम बहुत सारा जीवन जिए, 100 बरस जिए, लेकिन हमारे जीवन से हमारा और दूसरे का कोई उपकार ना हो तो वो जीवन व्यर्थ ही है। और वो एक दिन का जीवन भी सार्थक है जिसमें हम अपने आत्म कल्याण और पर कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कर पाते हैं। क्या पुष्प चढ़ाकर हम ऐसी भावना भा सकते हैं? चाहे तो भा सकते हैं, चाहे तो ऐसा संदेश उससे ले सकते हैं। भगवान के सम्मुख पांचवी द्रव्य नैवेद्य चढ़ाते हैं। इस नैवेद्य को या अन्न को प्राण माना है। वैसे तो 10 प्राण होते हैं लेकिन ये अन्नम बल प्राणा, अन्न भी एक प्राण है। आयु की आयु कर्म के ठीक ठीक